भागवतम दशम स्कंद अध्याय 58 श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार परम ऐश्वर्यवान भगवान पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ गए, जो पुनः जनता के बीच प्रकट हो चुके थे। भगवान के साथ युयुधान तथा अन्य संगी थे। जब पांडवों ने देखा कि भगवान मुकुंद आए हैं, तो पृथा के वे वीर पुत्र एक साथ उसी तरह उठ खड़े हुए, जिस तरह इंद्रियां प्राण के वापस आने पर सचेत हो उठती हैं। इन वीरों ने भगवान अच्युत का आलिंगन किया और उनके शरीर के स्पर्श से उन सबों के पाप दूर हो गए। उनके स्नेहिल हंसी से युक्त मुख मंडल को देखकर वे सब हर्ष से अभिभूत हो गए। युधिष्ठिर तथा भीम के चरणों पर सादर नमस्कार करने तथा अर्जुन का प्रगाढ़ आलिंगन करने के बाद उन्होंने नकुल तथा सहदेव जुड़वा भाइयों का नमस्कार स्वीकार किया। पांडवों की नव विवाहिता पत्नी, जो कि दोष रहित थी, धीरे धीरे तथा कुछ कुछ लज्जाते हुए भगवान कृष्ण के पास आई, जो उस समय उच्च आसन पर बैठे थे, और उन्हें नमस्कार किया। सात्यकी ने भी पांडवों से पूजा तथा स्वागत प्राप्त करके सम्मानजनक आसन ग्रहण किया और भगवान के अन्य संगी भी उचित सम्मान पाकर विविध स्थानों पर बैठ गए। तब भगवान अपनी बुआ महारानी कुंती को देखने गए। वे उनके समक्ष झुके और उन्होंने उनका आलिंगन किया तो अति स्नेह से उनकी आंखें नम हो गई। भगवान कृष्ण ने उनसे तथा उनकी पुत्र वधु द्रौपदी से उनकी कुशलता पूछी और उन्होंने भगवान से उनके संबंधियों द्वारका के विषय में पूछा। महारानी कुंती प्रेम से इतनी अभिभूत हो गई कि उनका गला रूंध गया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने उन तमाम कष्टों का स्मरण किया जिसे उन्होंने तथा उनके पुत्रों ने सहा था। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, जो अपने भक्तों के समक्ष उनका कष्ट भगाने के लिए प्रकट होते हैं। महारानी कुंती ने कहा, हे कृष्ण, हमारी कुशल मंगल तो तभी आश्वस्त हो गई जब आपने अपने संबंधियों का अर्थात हमारा स्मरण किया और मेरे भाई अक्रूर को हमारे पास भेजकर हमें अपना संरक्षण प्रदान किया। आप जो कि ब्रह्मांड के शुभ चिंतक मित्र एवं परमात्मा हैं, उनके लिए अपना तथा पराया का कोई मोह नहीं रहता, तो भी सबों के हृदयों में निवास करने वाले आप उनके कष्टों को समूल नष्ट कर देते हैं जो निरंतर आपका स्मरण करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे परम नियंता, मैं नहीं जानता कि हम मूर्खों ने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि आपका दर्शन पा रहे हैं, जिसे बड़े बड़े विरले योगेश्वर ही कर पाते हैं। जब राजा ने भगवान कृष्ण को सबों के साथ रहने का अनुरोध किया तो वर्षा ऋतु के महीनों में नगर के निवासियों के नेत्रों को आनंद प्रदान करते हुए भगवान सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहते रहे। एक बार बलशाली शत्रुओं का हंता अर्जुन अपना कवच पहनकर हनुमान से चिन्हित ध्वजा वाले अपने रथ पर सवार होकर अपना धनुष तथा दो अक्षय तरकस लेकर भगवान कृष्ण के साथ एक विशाल जंगल में शिकार खेलने गया, जो हिंस पशुओं से परिपूर्ण था। अर्जुन ने अपने बाणों से उस जंगल के भागों, सुअरों, जंगली भैंसों, रुरुओं, चरबों, गवेयों, गैंडों, श्याम हिरनों, खरगोशों तथा साहियों को भेद डाला। नौकरों का एक दल मारे गए उन पशुओं को राजा युधिष्ठिर के पास ले गया, जो किसी विशेष पर्व पर यज्ञ में अर्पित करने के योग्य थे। तत्पश्चात प्यासे तथा थके होने से अर्जुन यमुना नदी के तट पर गया। दोनों कृष्णों ने वहां स्नान करने के बाद नदी का स्वच्छ जल पिया। तब दोनों महारथियों ने पास ही टहलती एक आकर्षक युवती को देखा। अपने मित्र द्वारा भेजे जाने पर अर्जुन उस असाधारण युवती के पास गए। वह सुंदर नितंब, उत्तम दांत तथा आकर्षक मुख वाली थी। उन्होंने उससे इस प्रकार पूछा। अर्जुन ने कहा, हे सुंदर कटी वाली, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो और तुम कहां से आई हो? तुम यहां क्या कर रही हो? मैं सोच रहा हूं कि तुम पति की आकांक्षी हो। हे सुंदरी, मुझसे प्रत्येक बात बतला दो। श्री कालिंदी ने उत्तर दिया, मैं सूर्य देव की पुत्री हूं। मैं परम सुंदर तथा वरदानी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चाहती हूं और इसीलिए मैं कठोर तपस्या कर रही हूं। मैं उनको, जो लक्ष्मी देवी के धाम है, छोड़कर और कोई पति स्वीकार नहीं करूंगी। वे भगवान मुकुंद, जो कि अनाथों के आश्रय हैं, मुझ पर प्रसन्न हों। मेरा नाम कालिंदी है और मैं अपने पिता द्वारा यमुना जल के भीतर निर्मित भवन में रहती हूँ। मैं भगवान अच्युत से भेंट होने तक यहीं रुकूंगी। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अर्जुन ने ये सारी बातें वासुदेव से बतलाई, जो पहले से इनसे अवगत थे। तब भगवान ने कालिंदी को अपने रथ पर चढ़ा लिया और राजा युधिष्ठिर को मिलने वापस चले गए। एक पुरानी घटना बतलाते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पांडवों के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने एक अत्यंत अद्भुत एवं विचित्र नगरी का निर्माण विश्वकर्मा से कराया था। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उस नगरी में कुछ समय तक रहते रहे। एक अवसर पर श्री कृष्ण ने अग्नि को दान के रूप में खांडव वन देना चाहा, अतः वे अर्जुन के सारथी बने। हे राजन, अग्नि ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक धनुष, श्वेत घोड़ों की एक जोड़ी, एक रथ, कभी रिक्त न होने वाले दो तरकस दिए तथा एक कवच दिया, जिसे कोई योद्धा हथियारों से भेद नहीं सकता था। जब मैं दानव अपने मित्र अर्जुन द्वारा अग्नि से बचा लिया गया, तो उसने उन्हें एक सभा भवन भेंट किया, जिसमें आगे चलकर दुर्योधन को जल के स्थान पर ठोस स्पर्श का ब्रह्म होता है। तब अर्जुन तथा अन्य शुभ चिंतक संबंधियों एवं मित्रों से विदा लेकर भगवान कृष्ण सात्यकी तथा अपने अन्य परिचरों समेत द्वारका लौट गए। तब परम ऐश्वर्यशाली भगवान ने कालिंदी के साथ उस दिन विवाह कर लिया जिस दिन ऋतु चंद्र लग्न एवं सूर्य तथा अन्य ग्रहों की स्थिति इत्यादि सभी शुभ थे। इस तरह उन्होंने अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान किया। विंध्य तथा अनुविंध्य जो अवंती के संयुक्त राजा थे, दुर्योधन के अनुयायी थे, जब स्वयंवर उत्सव में पति चुनने का अवसर आया तो उन्होंने अपनी बहन मित्रविंदा को कृष्ण का वरण करने से मना किया, यद्यपि वह उनके प्रति अत्यधिक आसक्त थी। हे राजन, अपनी बुआ राजादि देवी की पुत्री मित्रविंदा को प्रतिद्वंदी राजाओं की आंखों के सामने से भगवान कृष्ण बलपूर्वक उठा ले गए। हे राजन, कौशल्य के अत्यंत धार्मिक राजा नग्नजीत के एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सत्या अथवा नग्नजीति था। जो राजा ब्याहने के लिए आते थे उन्हें तब तक विवाह नहीं करने दिया जाता था जब तक वे तेज सींगों वाले सात बैलों को वश में न कर लें। ये बैल अत्यंत दुष्ट तथा वश में न आने वाले थे और वे वीरों की गंध भी सहन नहीं कर सकते थे। जब वैष्णवों के स्वामी भगवान ने उस राजकुमारी के बारे में सुना जो बैलों के विजेता द्वारा जीती जानी थी तो वे विशाल सेना के साथ कौशल्य की राजधानी गए। कौशल का राजा कृष्ण को देखकर हर्षित हुआ। उसने अपने सिंहासन से उठकर तथा प्रतिष्ठित पद एवं पर्याप्त उपहार देकर भगवान कृष्ण की पूजा की। भगवान कृष्ण ने भी राजा का आदर पूर्वक अभिवादन किया। जब राजा की पुत्री ने देखा कि वह सर्वाधिक उपयुक्त दुल्हा आया है तो उसने तुरंत ही रमापति श्री कृष्ण को पाने की कामना की। उसने प्रार्थना की वे मेरे पति बने। यदि मैंने व्रत किए हैं तो पवित्र अग्नि मेरी आशाओं को पूरा करे। देवी लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव तथा विभिन्न लोकों के शासक उनके चरण कमलों की धूली को अपने सिरों पर चढ़ाते हैं और जो अपने द्वारा निर्मित धर्म संहिता की रक्षा के लिए विभिन्न कालों में लीला अवतार धारण करते हैं, भला वे भगवान मुझ पर कैसे प्रसन्न हो सकेंगे। सर्वप्रथम राजा नग्नजीत ने भगवान की समुचित पूजा की और तब उन्हें संबोधित किया। हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रहते हैं, अतः यह तुच्छ व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे पुरुनंदन, भगवान प्रसन्न थे और सुविधाजनक आसन स्वीकार करके वे मुस्काए तथा मेघ गर्जना सदृश धीर गंभीर वाणी में राजा से बोले। भगवान ने कहा, हे मनुष्यों के शासक, विद्वान जन धर्म में रस राजवर्य व्यक्ति से याचना करने की निंदा करते हैं, तो भी तुम्हारी मित्रता का इच्छुक मैं तुमसे तुम्हारी कन्या को मांग रहा हूँ, यद्यपि हम बदले में कोई भेंट नहीं दे रहे। राजा ने कहा, हे प्रभु, भला मेरी पुत्री के लिए आपसे बढ़कर और कौन वर हो सकता है। आप सभी दिव्य गुणों के धाम हैं। آپ کے شریر پر ساکشات لکشمی نواس کرتی ہیں اور وہ کسی بھی کارن سے آپ کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ کنتو ہے ساتوت پرمکھ، اپنی پتری کے لیے اپیوکت پتی سنشچت کرنے کے لیے ہم نے اس کے سمبھاوت وروں کے پراکرم کی پریکشا کرنے کے لیے پہلے سے ہی ایک شرط نشچت کی ہوئی ہے۔ ہے ویر، ان ساتوں خونکار بیلوں کو وش میں کرنا اسمبھو ہے۔ ان بیلوں نے انیک راجکماروں کے انگوں کو کھنڈت کر کے انہیں پراست کیا ہے۔ ہے یدوونشی، یدی آپ انہیں وش میں کر لے تو نشچت روپ سے آپ ہی میری پتری کے اپیوکت ور ہوں گے۔ ان شرطوں کو سن کر بھگوان نے اپنے وستر کسے، اپنے آپ کو سات روپوں میں وستارت کیا اور بڑی آسانی سے بیلوں کو وش میں کر لیا۔ بھگوان شوری نے ان بیلوں کو باندھ لیا جن کا گھمنڈ تتھا بل اب ٹوٹ چکا تھا، اور انہیں رسیوں سے اس طرح کھینچا جس طرح کوئی بالک کھیل میں لکڑی کے بنے بیلوں کے کھلونوں کو کھینچتا ہے۔ تب پرسن تتھا چکت راجا نگن جیت نے اپنی پتری بھگوان کرشن کو بیٹ کر دی۔ بھگوان نے اس انوروپ دلہن کو ویدک ودھی کے ساتھ سویکار کیا۔ راجکماری کو بھگوان کرشن پریہ پتی کے روپ میں پراپت ہونے پر راجا کی پتنیوں کو سروادک آنند پراپت ہوا اور اتیب اتسو کا بھاو جاگ اٹھا۔ گیت تتھا وادیا سنگیت اور برامنوں دوارا آشیرواد دینے کی دھونیوں کے ساتھ ساتھ شنک ترہی تتھا ڈھول بجنے لگے۔ پرمودت نر ناریوں نے اپنے کو سندر وستروں تتھا مالاؤں سے النکرت کیا۔ شکتی شالی راجا نگن جیت نے دہیج کے روپ میں 10,000 گاؤں، 3,000 یوا داسیاں جو اپنے گھلوں میں سونے کے آبھوشن پہنے تھی تتھا سندر وستروں سے النکرت تھی، 9,000 ہاتھیوں کے 100 گنا رتھ، رتھوں کے 100 گنا گھوڑے تتھا گھوڑوں کے 100 گنے نوکر دیے۔ سنیہ سے دروی بھوت ہردے سے کوشل کے راجا نے ور ودو کو ان کے رتھ پر بیٹھا دیا اور تب ایک وشال سینا کے ساتھ انہیں ودا کر دیا۔ جب سویمبر میں آئے اسہیڑو پرتیدوندی راجاؤں نے ساری گھٹنا کے بارے میں سنا تو انہوں نے بھگوان کرشن کو اپنی دلہن گھر لے جاتے سمے مارگ میں روکنا چاہا، کنتو جس طرح اس کے پورو بیلوں نے راجاؤں کے بل کو توڑ دیا تھا اسی طرح اب یدو یودھاؤں نے ان کے بل کو توڑ دیا۔ گانڈیو دنورداری ارجن اپنے متر کرشن کو پرسن کرنے کے لیے سدیو اتسک رہتے تھے، اتہ انہوں نے ان سارے پرتیدوندیوں کو بھگا دیا جو بھگوان پر باڑوں کی جھڑی لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سب ویسے ہی کیا جس طرح ایک سیہ شدر پشوؤں کو کھدیڑ دیتا ہے۔ تب یدوؤں کے پردھان بھگوان دیو کی ست دہیج تتھا ستیا کو لے کر دوارکا گئے اور وہاں سکھ پوروک رہنے لگے۔ بھدرا کیکیا راجیہ کی راجکماری تتھا کرشن کی بوہ شروت کیرتی کی پتری تھی۔ جب سنت درد اتیادی اس کے بھائیوں نے اسے کرشن کو بیٹ کیا تو انہوں نے بھدرا سے ویواہ کر لیا۔ تب بھگوان نے بھدر راج کی کنیا لکشمنا سے ویواہ کیا۔ کرشن اکیلے ہی اس کے سویمور سماروہ میں گئے تھے اور اسے اسی طرح ہر لے آئے جس طرح گروڑ ایک بار देवताओं का अमृत चुरा ले गया था। भगवान कृष्ण ने इन्हीं के समान अन्य हजारों पत्नियां तब प्राप्त की जब उन्होंने भौमासुर को मारा और उसके द्वारा बंदी बनाई गई सुंदरियों को छुड़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से ब्याह नामक 58वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।